आप मुझे कोई दूर का कमरा भी तो दे सकते थे ना, इस महल में तो इतने सारे कमरे हैं, अरुणिमा ने अपनी आईब्रो चढ़ाते हुए कहा। तो आस्तिक ने मुस्कुराते हुए कहा, बहुत कमरे हैं, हाँ लेकिन पिंक कलर बस इसी कमरे में है। अरुणिमा हैरान हो जाती है। तो आस्तिक मुस्कुराते हुए कहता है, तुम्हें पिंक कलर पसंद है ना, इसलिए मैंने ये वाला कमरा चुना है। देखो यहाँ की दीवारें पिंक हैं। अरुणिमा अपने दांत पीस लेती है और गुस्से से आस्तिक को कुछ कहना ही चाहती थी कि आस्तिक गंभीर होते हुए कहता है, अरुणिमा तुमने कहा था कि तुम यहाँ पर बस शादी अटेंड करने के लिए आई हो, मैंने तुम्हारी बात मानी है ना। देखो इतने सालों से मैं अपना किया हुआ वादा भी निभा रहा हूँ। क्या मैंने कभी भी कुछ ऐसा कहा है या किया है जिसे तुम्हें ये लगे कि मैं अपना वादा तोड़ रहा हूँ? अरुणिमा सोच में पड़ जाती है। सच में जब से आस्तिक में बदलाव आया है तब से उसने कुछ भी ऐसा नहीं किया है। लेकिन तभी अरुणिमा कुछ सोचते हुए कहती है, ठीक है मान लिया कि ये सब आपने जानबूझकर नहीं किया है, लेकिन मैंने यहाँ आने से पहले आपके सामने एक शर्त भी रखी थी, वो शायद भूल गए हैं आप। आस्तिक मुस्कुराते हुए कहता है, कुछ भी नहीं भूला हूँ मैं। आकाश आ रहा है, अरुणिमा की आंखों में चमक आ जाती है और वो आस्तिक को देखने लगती है। तो आस्तिक हाँ में सर हिलाता है। जयपुर एयरपोर्ट। आकाश एयरपोर्ट से निकलकर सीधे अपनी SUV कार में जाकर बैठ जाता है और उसके साथ साहिल भी बैठ गया था। उसने यहाँ आने से पहले ही सिंघल के पास एक फार्म हाउस खरीद लिया था क्योंकि उसे पता है आकाश ज्यादातर फार्म हाउस में ही रहेगा। अभी भी आकाश अपने फार्म हाउस ही जा रहा था। उसने ये तो कह दिया था कि वो इंडिया आ रहा है, लेकिन वो कब आ रहा है ये उसने नहीं बताया था। आकाश की गाड़ी सड़कों पर थी और अपनी मंजिल की तरफ बढ़ रही थी। तभी आकाश ने कुछ सोचते हुए साहिल को कहा, आउट। साहिल अचानक से हैरान हो जाता है। उसे समझ में नहीं आया कि आकाश कहना क्या चाहता है, लेकिन आकाश ने अपनी सख्त आवाज में चिल्लाते हुए कहा, स्टॉप द कार। ड्राइवर ने तुरंत गाड़ी सड़क के किनारे रोक दी और ड्राइवर की हिम्मत नहीं हो रही थी कि पीछे पलटकर देख सके। लेकिन साहिल ने पूछा, क्या बात है सर, आपने बीच सड़क पर गाड़ी क्यों रुकवाई है? लेकिन आकाश गाड़ी का दरवाजा खोलकर बाहर निकलता है और कहता है, आउट द कार। ड्राइवर और साहिल दोनों एक साथ गाड़ी से बाहर निकलते हैं। तो आकाश ड्राइवर का कॉलर पकड़कर उसे गाड़ी से दूर धकेल देता है और खुद ड्राइविंग सीट पर बैठ जाता है। ड्राइवर और साहिल दोनों ही समझ नहीं पा रहे थे कि आकाश करना क्या चाहता है, और अगले ही पल आकाश यू टर्न मारते हुए उस गाड़ी को दूसरी दिशा में ले जाता है। उन दोनों की आंखें एकदम से बड़ी हो गई थीं। साहिल थोड़ा तेज कदमों से गाड़ी की दिशा में चलते हुए कहता है, सर हमें कहाँ छोड़कर जा रहे हैं? आकाश की कार जयपुर के एक सिंपल से मोहल्ले के सामने आकर रुक गई थी और वो उस मोहल्ले को देखने लगा था। उसकी आंखों में कुछ अनकहे से जज्बात उमड़ आए थे जब वो उन घरों को और छतों को देख रहा था। आकाश अपने इन्हीं जज्बातों से सामना नहीं करना चाहता था, इसलिए उसने कस के अपनी आंखें बंद की और गाड़ी को दूसरी तरफ घुमा लिया। ये वही मोहल्ला है जहाँ पर आकाश और अरुणिमा बचपन में एक साथ रहा करते थे। शायद आज भी आकाश इन गलियों को भुला नहीं है। वहीं पर सड़क के किनारे अनंत अपनी बाइक रोककर एक दुकान में जाता है और उससे कहता है, अरे भाई मैंने एक सूट दिया था तुम्हें रेडी करने के लिए, किया या नहीं? अरे मेरी बहन की शादी है यार, जल्दी से मेरा सूट रेडी कर दो। दुकानदार ने अनंत को उसका सूट पकड़ाते हुए कहा, अरे भैया सूट तो आपका कब का रेडी हो गया है, ये लो आपका सूट। अनंत सूट लेता हुआ दुकान से बाहर निकलता है, पर इससे पहले कि वो अपनी बाइक तक पहुंच सकता पीछे से उसे एक तेज धक्का लगता है। अनंत के हाथों से छूट छूट कर नीचे जमीन पर मिट्टी में गिर जाता है और अनंत भी जमीन पर गिरा हुआ था। अनंत ने पलटकर पीछे देखा तो उसके सामने दो लोग खड़े थे और शायद अनंत इन दोनों को जानता था। अनंत अपनी जगह से खड़ा होता है और अपने शरीर से मिट्टी झाड़ते हुए कहता है, ये क्या बदतमीजी है? उनमें से एक आदमी जो थोड़ा हट्टा कट्टा था उसने अनंत से कहा, कोर्ट में तो बड़ी दलीलें पेश कर रहा था, कह रहा था मेरे भाई को सजा होनी चाहिए, ऐसे होना चाहिए वैसे होना चाहिए, उसने ये जुर्म किया है उसने वो जुर्म किया है, अब हो गई उसे सजा, तो अब तेरी सजा की बारी है। अनंत अपनी आंखें बंद करके अपना चेहरा दूसरी तरफ घुमाता है और नामे सर हिलाते हुए फिर उस आदमी को देखकर कहता है, कोर्ट की बातें कोर्ट में ही किया करो, तुम्हारे भाई ने फ्रॉड किया था इसीलिए उसे सजा मिली है, मेरा काम है अपने क्लाइंट को इंसाफ दिलवाने, बाकी अगर तुम्हें कोई बात करनी है तो पेशी में आकर बात करना। इतना कहकर अनंत जाने के लिए पीछे मुड़ता ही है कि उस आदमी ने अनंत के कंधे पर हाथ रखकर उसे अपनी तरफ घुमाया और गुस्से में उसे देखकर कहने लगा, अरे तो क्या हो गया अगर कुछ लाख का घपला मेरे भाई ने कर भी दिया तो? इतनी बड़ी कंपनी है उसमें से कुछ पैसे गायब भी हो गए तो उन अमीरों को कौन सा फर्क पड़ता है? और तुझे भी तो पैसों का ऑफर दिया था ना ताकि तू इस केस से अपनी कदम पीछे ले ले, लेकिन तू नहीं माना, आखिरकार तूने मेरे भाई को सजा दिलवाई ही थी, अब जबकि उसे सजा मिल ही गई है तो थोड़ा सजा का स्वाद तू भी चख ले। ये कहते हुए उस आदमी ने अनंत के गाल पर एक मुक्का मारने के लिए अपना हाथ उठाया ही था कि अनंत ने उसके हाथों को अपनी मुट्ठी में जकड़ लिया। अनंत ने उस आदमी के हाथ को मरोड़कर उसकी पीठ पर लगा दिया। उसने गुस्से में उस आदमी को घूर कर देखा और कहा, डॉक्टर और वकील की दुश्मनी कभी कभी भारी पड़ सकती है, क्योंकि डॉक्टर तुम्हें जमीन के 2 फीट नीचे गाड़ सकता है और वकील तुम्हें हवा में 2 फुट पर लटका सकता है। तभी थोड़ी दूरी पर उस आदमी के साथ आए बाकी गुंडे गाड़ी से निकलते हैं और अनंत के पास आकर उसे घेर लेते हैं। वो आदमी जिसे अनंत ने पकड़ा हुआ था वो हंसते हुए कहता है, अब कहाँ से बचकर जाएगा वकील, मेरे आदमी तेरी वो हालत करेंगे कि वकील को डॉक्टर की जरूरत पड़ेगी।